पाश्चात्य देशों में अकेले गए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए गए। सभी को अवसर दिया, स्पर्श करो, मेरे संपर्क में आ जाओ। और जैसे ही सबने उनका संपर्क किया, स्पर्श किया, फटाक से मुड़ गए, हरे कृष्ण बोलते बोलते सबको हरे कृष्ण आंदोलन में ला दिए। इसी प्रकार यदि श्री प्रभुपाद जैसा सामर्थ्य हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनकी कृपा से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना है। प्रचार करना है, लेकिन प्रचार के समय सावधान रहना है, अन्यथा माया के चंगुल में फंस सकते हैं। और श्री प्रभुपाद इतने शुद्ध थे, इतने शक्तिशाली थे कि विश्व भर में उन्होंने अपने प्रचार कार्य से प्रभाव किया, विश्व पर अपने अमिट छाप छोड़ गए। उस प्रकार जब सारे बड़े परेशान थे, वर्णन आता है कि भगवान श्री विष्णु स्वयं ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट होते हैं। भगवान सारे देवताओं को कहने लगते हैं कि देवतागण, आप चिंतित न करें, चिंतित न हो, चिंता न करें, ये जो हो रहा है ये सब ध्रुव की तपस्याओं का ही परिणाम है। मेरा भक्त है, वह भीषण तपस्याओं में लीन है, मुझे संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, मैं अभी जाकर उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। देवतागण भी संतुष्ट हुए, वो बड़े परेशान थे, ये अचानक आपातकालीन परिस्थिति कहां से उत्पन्न हो गई, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने उनको सांत्वना दी और अब भगवान श्री विष्णु स्वयं ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट होते हैं। और भगवान ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट होते हैं और ध्रुव महाराज अपने मुख से एक शब्द बोल नहीं पाता। ध्रुव महाराज देख रहे हैं कि सामने भगवान का साक्षात रूप विद्यमान है, जिस रूप के दर्शन करने के लिए वो आकांक्षी था वही रूप उनके समक्ष खड़े हैं, लेकिन ध्रुव महाराज का कंठ इस प्रकार भर गया कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाया। भगवान श्री विष्णु ने उन पर कृपा की, अपने हस्त कमल में शंख लिया और ध्रुव महाराज के सर को स्पर्श कर दिया और भगवान के दिव्य ज्योतिर्मय शंख के प्रभाव से ध्रुव महाराज अपने मुख कमल से सुंदर संस्कृत के श्लोकों की रचना करने लगे। तो वास्तव में इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति केवल दार्शनिक चिंतन और काव्य सृजन से भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। केवल भगवान की असीम अनुकंपा वश ही हम भगवान की स्तुति कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद अपने शिष्यों को आरंभ के दिनों में ऐसी ट्रेनिंग देते कि जो कुछ भी आपने मुझसे सुना वो दूसरों को सुनाओ, अर्थात कृष्ण कथा दोहराना हमारा कर्तव्य है। और श्री प्रभुपाद की कृपा से कई उनके भक्त आरंभ के दिनों में कुछ ही दिनों में कृष्ण कथा दूसरों को सुनाने लगते। और वर्णन आता कि हृदयानंद महाराज, जो कि आज की तारीख में बहुत बड़े स्कॉलर हैं संस्कृत के, उस समय उनका वो पहला क्लास किस प्रकार दिए, उस समय उनको अधिक फिलॉसफी नहीं जानते थे, तो केवल प्रभुपाद का एक टेप वो अपने पास रखे थे और प्रभुपाद का टेप वो अपने शॉल के अंदर छुपा लिए और हेडफोन यहां पर इस तरह से दबा लिया और शॉल को ऊपर से ढक लिया और अंदर प्रभुपाद के टेप को चालू कर दिया। एक लाइन सुने, पॉज किए, उसी लाइन को रिपीट कर दिया, दोहरा दिया, फिर चलाया, फिर पॉज किया, फिर दूसरी लाइन को रिपीट कर दिया। और जितने लोग बैठे हैं देख रहे हैं कि बिल्कुल गंभीर होकर आंख बंद करके बिल्कुल प्रवचन कर रहे हैं, बीच में रुक रुक के बड़ा मननशील प्रवचन कर रहे हैं, बहुत चिंतन करके प्रवचन कर रहे हैं, सोच सोच का प्रवचन कर रहे हैं। तो वास्तव में ये हमारे जीवन की सफलता है कि जो कुछ भी सुना प्रभुपाद से उसको दोहरा दिया यथाशक्ति यथासंभव। इस प्रकार हमें प्रयास करके भगवान की स्तुति करनी है। ऐसी स्तुति भगवान को अधिक लुभावनी लगती है, न कि हृदय में भगवान होने की इच्छा पालकर हम किसी प्रकार के आडंबर रचाए। तो भगवान ध्रुव महाराज के भावनाओं को समझते हुए उनको स्पर्श कर दिए। अब ध्रुव महाराज सुंदर श्लोकों की रचना करने लगे। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगा भूयात अनंत महताम अमलाशयानाम ये नौजसो बनमुरु भगवत भवद्धि नेश्ये भवत गुण कथा मृत पानमत। हे भगवान, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे मेरे स्वामी, आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हो। ये मेरे अनेक अनेक जन्मों का परम सौभाग्य है, परम सफलता है। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंग, मेरे हृदय की केवल एकमेव अभिलाषा ये है कि मैं भक्तों के संग को प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे भक्तों के संग में एक निम्न स्थान प्रदान करें, ऐसे भक्तों का संग जहां निरंतर कृष्ण कथा की लहर प्रवाहित हो रही हो, जहां कृष्ण कथा की अमृतमयी वेगवती सरिताओं की धारा प्रवाह बह रही हो, ऐसे भक्तों के संग में मुझे स्थान चाहिए। भूयात अनंत महताम अमलाशयानाम, और ऐसे भक्त जिनका हृदय निर्मल हो, स्वच्छ हो, भौतिक जगत को भोगने की इच्छाओं से रिक्त हो। ये नंजसो बनमुरु भगवत भवाद्धि, और केवल ऐसे महान भक्तों के सत्संग के माध्यम से ही इस भौतिक प्रपंच से मुक्त होने की कोई आशा है भगवान। नेशे गुण कथा अमृत पानमत, और बस यही एक आशा है, यही एक इच्छा है कि कृष्ण कथा का श्रवण करते हुए मेरा हृदय पूरी तरह से मदमत्त हो जाए, मैं मंत्रमुग्ध हो जाऊं और इस रसा स्वाद को निरंतर चिरकाल के लिए चखता रहूं। विचारणीय बात यह है कि हम सभी अपनी साधना करते हुए विचार करते हैं कि एक दिन कृष्ण के दर्शन होंगे, और जब कृष्ण के दर्शन होंगे तब जीवन सार्थक होगा। ध्रुव महाराज के समक्ष कृष्ण का दर्शन था। कृष्ण के दर्शन करते हुए वह भक्तों के संग की कामना कर रहे हैं, कृष्ण के साक्षात नेत्रों से दर्शन करते हुए कामना कर रहे हैं कि कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान किया जाए। देखिए किस प्रकार भक्तगण कथा श्रवण का लाभ चाहते हैं, अर्थात जो भगवान श्री विष्णु के दर्शन के पश्चात जो लालसा ध्रुव महाराज के हृदय में थी, वही अवसर आप सभी को अभी प्राप्त है। वही स्वर्ण संधि हम सभी को श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त है। भक्तों का संग है, भक्तों के संग में एक प्रेममयी आदान प्रदान की अभिलाषा है। ऐसे भक्तों के संग में कृष्ण कथा की बखान हो रही है। जो पद ध्रुव महाराज भगवान श्री विष्णु के दर्शन के पश्चात प्राप्त करना चाहते हैं, वही अवसर हम सभी को आज इस तारीख में प्राप्त है। क्या हमारे हृदय में वह कृतज्ञता की भावना है? क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये मूल्यवान भेंट श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान की? भक्तों का संग, भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए एक अद्वितीय अवसर। अरे जो पद ध्रुव महाराज 6 महीने की भीषण तपस्याओं के पश्चात प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही भक्तों के संग को त्यागने की कोई इच्छा करे तो कितना बड़ा मूर्ख है। अर्थात भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है और भक्तों के संग में सेवा करना ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ऊर्जा सर्वव्यापी है, बिजली सर्वव्यापी है, लेकिन फिर भी एक बल्ब की आवश्यकता पड़ती है। बल्ब के माध्यम से प्रकाश चारों दिशाओं में छाता है। उसी प्रकार भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान विद्यमान रहते हैं। उनके संपर्क में आकर हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्तों के संग की कामना करनी चाहिए। जहां कहीं भक्तों का संग मिले, हमें वहां भक्तों के संग में प्राप्त आना चाहिए, कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु ध्रुव महाराज से बहुत संतुष्ट होते हैं और कहते हैं, ध्रुव आपको 36,000 वर्षों तक इस जगत में राज्य करने का अधिकार प्रदान करता हूं। आपकी इंद्रियां इस प्रकार प्रबल बनी रहे और मृत्यु के पश्चात आपको ध्रुव लोक की प्राप्ति हो जाएगी। वह ध्रुव लोक जो इस जगत के विनाश के पश्चात भी बना रहेगा। और यहां पर ध्रुव महाराज पूरी तरह भगवान के प्रति कृतार्थ हो रहे हैं और भगवान कह रहे हैं, ध्रुव भविष्य में एक दिन आएगा जब तुम्हारा भाई उत्तम यक्षों के साथ युद्ध करने जाएगा और यक्षों द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी और पुत्र विरह के शोक में उसकी मां सुरुचि विलाप करती हुई जब वन में प्रवेश करेगी तो दावाग्नि में जलकर उसका नाश हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जब सुरुचि इस प्रकार का अपराध करती है, उस समय ध्रुव भक्त नहीं थे। वर्तमान में कोई भक्त न हो और उसके प्रति यदि हम कोई अनाप शनाप अपराध कर दें और भविष्य में वो भक्त बन जाए, तो फिर पहले जो कुछ भी था वो सब अपराध के अकाउंट में आ जाता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। भले आपका कोई बच्चा हो, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। भले कोई बाहर का व्यक्ति हो जो पूरी तरह इंद्र तृप्ति में लीन हो, लेकिन कल के दिन वो भक्त बन जाए, तो जो कुछ भी गालियां आपने बकी हैं वह सब वैष्णव अपराध के रूप में आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। और तब ध्रुव महाराज वापस घर लौटकर आते हैं। और ध्रुव महाराज का पुनः घर लौटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब घर लौटकर ध्रुव महाराज आते हैं, अब उन्होंने अपने हृदय की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर ली, ध्रुव लोक की प्राप्ति कर ली। लेकिन ध्रुव महाराज अपने आप को दुत्कार रहे हैं कि मैंने क्या कामना की, छी धिक्कार है मुझ पर। अरे स्वयं साक्षात भगवान मेरे समक्ष खड़े हैं और मैं केवल इस भौतिक जगत के किसी उच्च पद की प्राप्ति की अभिलाषा कर रहा था, धिक्कार है। और प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा करते हुए भौतिक इच्छाओं के काम न करे, उसे भी ध्रुव महाराज के समान बाद में चलकर स्वयं को धिक्कारना पड़ता है। ध्रुव महाराज जब लौट कर आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनके पिताजी उत्तानपाद उनकी दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति के साथ उनका स्वागत करते हैं। और वर्णन आता है, अभिवंद पितु पादो आशीर् चाभिमंत्रित नाम मंत्र शीर्षण सत्कृत सज्जनाग्रणी। ध्रुव महाराज ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया, नाम मातरौ शीर्षण और प्रणाम किया। मातरौ यह महत्वपूर्ण शब्द है, गौर कीजिए। अपना सर झुकाया, शीश झुकाया, दोनों माताओं के समक्ष। हाँ, दोनों माताएं सुनीति और सुरुचि। तो कोई प्रश्न कर सकता है, अरे सुरुचि तो बहुत बड़ी वैरी थी, सुरुचि के साथ तो इतना महान वैर था, वो तो उसकी शत्रु थी, तो क्या ध्रुव महाराज उसके सामने झुक कैसे रहे हैं? तो वास्तव में जब किसी के साथ कलह होता है तो हम झुकना नहीं चाहते, नम्र नहीं होना चाहते, इच्छा करते हैं कि कुछ उनके साथ वैर का संबंध बनाए रखें। अरे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। नना ममा तरह शीर्षना, ध्रुव महाराज के हृदय में इतना क्रोध था सुरुचि के प्रति कि वो अपने राज घराने राजमहल को त्याग कर वन में तपस्या करने के लिए तैयार थे। अब वही ध्रुव अपने क्रोध को थूक कर, अपने क्रोध को पूरी तरह उगल कर अपनी माता को प्रणाम कर रहे हैं। वही माता, वही भी माता, वही सौतेली मां जो ध्रुव के कोप का कारण थी। तो इससे हम यही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि ध्रुव महाराज के हृदय में यह परिवर्तन कैसे आया, ध्रुव महाराज की भावनाएं अपनी मां के प्रति कैसे परिवर्तित हो गई। हम सभी के जीवन में भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनका मुख हम देखना नहीं चाहते, और मुख देख लिया तो लगता है कि फिर स्नान कर ले, और कभी लगता है कि भगवान ने इनको पैदा ही क्यों किया, और कभी विचार करते हैं कि ऐसा कभी दिन आएगा क्या कि इनका मुख देखना न पड़े। ये क्रोध से उत्पन्न अनेक भावनाएं हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी अशांति के कारण है। लेकिन अब वे महाराज अपने जीवन के उदाहरण से हम सभी के लिए ये आशाजनक प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। नमा नमा करो शीर्षना सत्कृता सज्जनाग्रणी। ध्रुव महाराज में यह महान परिवर्तन क्यों आया? सत्कृतम, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की। सत्कृता, जो कृष्ण की भक्ति करेगा उसमें भगवान की शक्ति तो आएगी ही ना। सत्कृतम, अरे भगवान की भक्ति कीजिए, इसका परिणाम क्या होगा? सत्कृता सज्जनाग्रणी। ध्रुव महाराज क्या बन गए? सज्जनाग्रणी, सज्जन अग्रणी अर्थात सज्जनों में श्रेष्ठ, बेस्ट अमंगस्ट जेंटलमैन, अर्थात जिसके अंदर दिव्य गुण हो, जो भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर अपने अंदर दिव्य गुण उत्पन्न करता है वह है सज्जन। और ध्रुव महाराज की यहां पर परिभाषा दी जा रही है, उनका वर्णन किया जा रहा है उनके चरित्र का, कि वह न केवल सज्जन थे, सज्जन अग्रणी, सज्जनों में श्रेष्ठ हो गए थे। अरे जब ध्रुव महाराज के चरित्र में इतना महान परिवर्तन हो सकता है तो हमारे चरित्र में भी ये परिवर्तन संभव है। बस हमें ध्यानपूर्वक नारद मुनि के आदेशों अनुसार चलना है। जो आदेश नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिए, उन्हीं आदेशों को आप सभी अपने जीवन में उतारिए। भगवान के नाम का जप, भगवान की सेवा पूजा और तीर्थ यात्राओं का गमन, किसी तीर्थ स्थान में निवास और चित्त को शुद्धिकरण करने के लिए इन साधनाओं को अपने जीवन में उतारना बड़े ही आसान मार्ग हैं। यदि आप भक्तों के संग में आकर प्रारंभ करोगे तो दिन भरी रात चौगुनी आपका उत्साह बढ़ता चला जाएगा, ये इस बात की गारंटी है। हो ना हो एक महीने के लिए आप नाम जप करके तो देखें, देखिए कितना परिवर्तन आता है, ये अनुभव करने वाली बात है। शत प्रतिशत गारंटी देते हैं, आप इस महामंत्र का जप कीजिए और देखिए कैसे आपका चरित्र बदलता है, कैसे आपके चरित्र में महान परिवर्तन आता है। अन्यथा अपने चरित्र को बदलना इतना आसान नहीं, बहुत कठिन कार्य है। और बाहर जितने भी आपको भौतिक जगत के प्रलोभन दिख रहे हैं, यह केवल आपको परेशान करते ही रहेंगे। ध्रुव महाराज का जीवन इसीलिए हमारे लिए उदाहरण है, आदर्श है। उनके क्लेश का कारण क्या था? अपूर्ण इच्छाएं, असीमित इच्छाएं, मिथ्या अहंकार से आसक्ति। और फिर जब कृष्णा के संपर्क में आए तो ध्रुव महाराज के सारे क्लेश नष्ट हो गए। भौतिक जगत में आपको भोग के अनेक प्रलोभन प्राप्त होंगे, लेकिन यदि उन प्रलोभन के वशीभूत आप आ जाओगे तो केवल क्लेश ही भुगतना पड़ेगा। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहे थे, देखा साइड में बड़ा होटल है, होटल में बोर्ड लगा हुआ है, जितना खाना है खाओ, जितना खाना है खाते चले जाओ, बिल आपका पोता भरेगा। तो सज्जन बड़े खुश हुए, बोला वाह, होटल तो बहुत देखे हैं, ये तो कमाल का होटल है। घुस गए अंदर, खूब ऑर्डर दिया, दबा के खाने लगे, एक बार, दो बार, तीन बार, दस बार, जो भी मिला सब खा गए। खाने के पश्चात पेट भर गया, निकल रहे थे, मैनेजर बोला साहब 1000 रुपए का बिल है। अरे नालायक, एक तो यहां पर बोर्ड लगाया है, बिल पोता भरेगा, मैं क्या भरूं? तो कह रहे नहीं जी, आपके दादाजी का बिल है, एक आपके दादाजी का बिल है, वो आपको भरना है। तथा कथित बोर्ड बहुत दिखेंगे, भोग कीजिए, भोग कीजिए, अभी कुछ नहीं होगा, भोग कीजिए, लेकिन वास्तव में ये शरीर रूप यंत्र लेकर आए हैं, इसमें पहले ऐसे अनेक कुकर्म कर चुके हैं जिसका बिल इस जीवन में भरना रहता है, तो उन क्लेशों से कैसे बचेंगे? भले हमारी योजनाएं हो, अब हम भोग करेंगे, वर्तमान में हम भोग करेंगे, लेकिन भूतकाल में जो कुछ भी हमने भोग किया है उसका बिल का भी भरना है ना। तो इसलिए भोग का संकल्प केवल एक मिथ्या है और जीवन में हमको असंतुष्ट ही रखता है। मृत्यु निश्चित है और किसी भी समय हम मृत्यु के जकड़ में आ सकते हैं। एक राजा थे, बड़े शक्तिशाली थे, बहुत धनवान थे। एक साधु उनके पास आए, साधु बड़े गंभीर दिख रहे थे। राजा ने साधु को देखकर कहा, साधु जी बड़े गंभीर लगते हो, क्या बात है? साधु ने कहा, राजन वैसे तो बात कोई नहीं है, बस ये है कि आपकी बहुत निकट भविष्य में मृत्यु होने वाली है, मैं त्रिकालदर्शी हूं, देख रहा हूं तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। राजा ने कहा, अरे क्या बात करते हो, मेरी मृत्यु होने वाली है, अरे मर गया मैं तो। साधु ने कहा, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि तुम मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएगा। राजा ने कहा, चलो कुछ तो शांति मिली, मरूंगा लेकिन स्वर्ग में जाऊंगा। साधु ने कहा, लेकिन एक समस्या है, नरक में मच्छर बहुत होंगे, आपको सोने नहीं देंगे। राजा ने कहा, कमाल है, ये कैसा कैसा ये स्वर्ग है, नरक है कि स्वर्ग है, क्या है ये? स्वर्ग में मच्छर है, मैं सोऊंगा तो कैसे सोऊंगा? साधु ने कहा, लेकिन एक और अच्छी खुशखबरी है, वो क्या? मच्छर होंगे लेकिन वहां मच्छरदानी का भी सप्लाई होगा, मच्छरदानी लगा सकते हो। तो राजा ने कहा, फिर ठीक है, फिर एक अच्छा समाचार दिया, लेकिन एक समस्या है। अब क्या हो गया भाई? मच्छरदानी में बड़े बड़े गड्ढे होंगे, तो मच्छरदानी होते हुए भी बड़ी समस्या होगी। तो राजा ने कहा, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा, लेकिन एक समाधान है। अरे तुम्हारा ये लेकिन कब समाप्त होगा? ये बड़े बड़े गड्ढे तो होंगे, लेकिन सुई और धागा लेकर यदि आप उन गड्ढों को भर दो, सील दो, तो सब ठीक हो जाएगा। राजा ने कहा, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया दिया आपने, तो मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, बस एक ऐसा उपाय ढूंढो कि सुई और धागा जाते जाते साथ में लेके जाना और वहां पर सब ठीक हो जाएगा। राजा ने कहा, बहुत बढ़िया। और राजा चुप हो गए, विचार करने लगे। साधु जाने लगे, राजा पीछे पीछे कह रहे, रुकिए रुकिए, ये आप सुई धागा की बात कर रहे थे, लेकिन ये मृत्यु के बाद मैं सुई अपने साथ वहां स्वर्ग में कैसे लेके जाऊंगा? राजा ने कहा, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। राजन मृत्यु के बाद हम अपने साथ एक सुई और धागा भी नहीं लेकर जा सकते, तो इतना बड़ा साम्राज्य को लेकर क्यों इतना गर्वित हो रहे हो? मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु के पश्चात जो कोई भी अपार संपत्ति है वो तो यहीं छोड़कर जाना है। तो इसलिए जब सिकंदर की मृत्यु हुई, सिकंदर ने अपने सारे मंत्रियों को कह दिया मृत्यु के समय मुझे जब दफनाओ तो इस तरह हाथ को फैलाकर मुझे दफनाओ, मेरे हाथ ऐसे होने चाहिए, खुले होने चाहिए, लोग दर्शन कर सके। ये सिकंदर चारों दिशाओं में विजय प्राप्त किया लेकिन मृत्यु के बाद खाली हाथ गया, कुछ नहीं लेकर गया। इसीलिए ध्रुव महाराज को इस भौतिक जगत की अपार संपत्ति प्राप्त हुई, ध्रुव तारा प्राप्त हुआ, लेकिन ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आप मेरे समक्ष खड़े हो, हे साक्षात आनंद घन, ज्ञान घन, चिद घन रूप वाले भगवान श्री विष्णु, अरे जिनका दर्शन सर्व मंगलकारी है, हे भगवान कृपा करके बस मेरी इस अभिलाषा की पूर्ति कीजिए कि मुझे भक्तों के संग में हरिकथा का आस्वादन हो, मुझे ऐसे भक्तों का संग प्राप्त हो जहां मैं केवल कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन कर सकूं, और कुछ नहीं चाहिए। अर्थात जो निष्कर्ष ध्रुव महाराज अपने जीवन में आए हैं, जिस निष्कर्ष पर ध्रुव महाराज अपने जीवन में आए हैं, उस निष्कर्ष पर हमें पहुंचना है। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से ये सुंदर अवसर, वह पद जिसकी कामना ध्रुव महाराज कर रहे थे, वह पद हम सभी को प्राप्त है। भक्तों का संग है, भगवान का विग्रह है, हरिनाम संकीर्तन है, श्रीमद् भागवतम है, भगवान का धाम है, सब कुछ तो है। अरे सब कुछ तो है, फिर भी क्यों मन में बारंबार हम असंतुष्ट रहते हैं? इसलिए भगवान के सामने जब हम जाएं तो हाथ जोड़कर कृतज्ञता पूर्वक जाना चाहिए, थैंक यू कृष्णा, धन्यवाद भगवान, आपने क्या कुछ नहीं दिया। कई बार लोग भगवान के पास केवल कंप्लेंट्स का लिस्ट लेकर ही जाते हैं, उनको लगता है कि मंदिर अर्थात कंप्लेंट रजिस्टर वहां रहता है, और अपनी अपूर्ण इच्छाओं की लिस्ट लेकर जाते हैं, सीधा भगवान के साथ सामने जाते हैं, हाथ जोड़कर शुरू हो जाते हैं, भगवान पिछले हफ्ते ये मांगा था अभी तक नहीं हुआ, एक साल पहले ये मांगा था याद है कि नहीं, और छह महीने पहले वो भी बोला था और उसके साथ 10 रुपए भी चढ़ाया था, उसका क्या हुआ? और फिर एक पूजा करवाया था घर में, वो आपके नाम पे करवाया था, ऐसा भूल गया लगता है, अकाउंट रख रहे हो कि नहीं बराबर? तेरा सेक्रेटरी को याद दिला देना। भगवान के साथ हम कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, भगवान के साथ हम कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा करनी है। ध्रुव महाराज व्यवसाय करने गए थे, व्यवसाय करने गए थे, लेकिन अंततो गत्वा ध्रुव महाराज ने कहा कि भगवान का दास बनना ही श्रेष्ठ है। इसलिए हम सभी से यही निवेदन करेंगे कि आप सभी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्रीला प्रभुपाद जी की जन्मभूमि है कलकत्ता, यहां पर आप सभी वरिष्ठ भक्त एकत्र हुए हैं, केवल कथा सुनकर चले मत जाइए, कथा से इस संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। हमें जीवन में कुछ करना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, हमें स्वयं कृष्ण भक्त बनना है। भारत में समस्या ये होती है कि लोग अपने जीवन में किसी आध्यात्मिक मार्ग को उतारना कम चाहते हैं। लोग आके कहेंगे आप लोग भक्ति कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, हरे कृष्ण जपते हो, बहुत अच्छा मंत्र है, आप जपो। आप नहीं जपोगे? नहीं नहीं, हम तो नहीं जपे, आप जपो, बहुत अच्छा है, सुना है, दादी ने मेरी बताया है, आप जपो, आशीर्वाद है। अर्थात भारत में कमेंट्री देने वाले बहुत हैं, खेलने वाले खिलाड़ी कम हैं। सब लोग अनेक प्रकार से बहुत कुछ बोलकर स्वयं वह कार्य अपने जीवन में नहीं उतारना चाहते, लेकिन यदि एक बार आप कुछ समय के लिए एज एन एक्सपेरिमेंट केवल प्रयोग के रूप में इस महामंत्र के जप को प्राथमिकता देंगे, कुछ समय के लिए, केवल एक महीने के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और देखिए, और आप देखेंगे कि आपके और आपके परिवार के जीवन में महान क्रांति फैल जाएगी। ये हम नहीं, आप नहीं, करोड़ों वर्षों से महान आचार्यों का कथन है और हजारों हजारों भक्तों ने भूतकाल में और वर्तमान में इसका प्रमाण देखा है। तो आइए आज के इस कथा का हम इस सार के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्ण, तो सभी भक्तों का हम आज के इस कथा में फिर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज और कल के चर्चा का विषय है क्लेश का समाधान क्या है, क्लेश क्या है, क्लेश का कारण क्या है, व्हाट इज सफरिंग, व्हाट इज कॉज ऑफ सफरिंग, इसके विषय में चर्चा करने के पश्चात अब हम क्लेश के समाधान के विषय में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू सफरिंग। शास्त्र में वर्णन आता है, यावत् स्वस्थ कलेवरम मिद गृहम यावत् न दूरे गृहा यावत् चेन्द्रिय शक्ति अप्रतहिता यावत् क्षणो नायुष आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यम प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवनं तु कूप खननम प्रत्युद्यम कीदृश। इस श्लोक में वर्णन आ रहा है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और मनुष्य जीवन में मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। यावत् स्वस्थ कलेवरम इद गृहम, जब तक ये गृह, जब तक ये देह, जिसकी तुलना एक गृह या घर से की गई है, जब तक ये देह स्वस्थ है, घर ठीक ठाक है, तावत न दूरे जरा, और जब तक बुढ़ापा नहीं आया, और जब तक इंद्रियां शक्तिशाली और प्रबल हैं, और हमारे पास अनेक क्षण हैं, आत्मश्रेयसी तावत एव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपनी ऊर्जा का प्रयोग आत्मा के भलाई के लिए करे, आत्मा के उद्धार के लिए हमें प्रयास करना है, प्रयोग करना है। आत्मश्रेयसी तावत एव विदुषा, वास्तविक विद्वान वो है जो आत्मा की भलाई के लिए किसी न किसी प्रकार से प्रयत्न करे, और यदि ऐसा नहीं करेंगे और किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, तो वर्णन आता है प्रोदीप्ते भवनम तु कूप खननम, जब घर में आग लग जाए और जब घर के सारे खिड़की द्वार बुरी तरह प्रोदीप्त हो जाएं, प्रज्वलित हो जाएं, और कुछ ही क्षणों में जलकर राख होने वाले हो, और ऐसी अवस्था में ऐसे घर में फंसा हुआ व्यक्ति यदि घर के आंगन में कुआं खोदना आरंभ करे, तो कैसे वह उस कुएं से जल प्राप्त कर सकता है। प्रोदीप्ते भवनम तु कूप खननम प्रत्युद्यमा की दृश्य, अरे यह तो व्यर्थ प्रयास हुआ, घर में आग लग चुकी है, ऐसी अवस्था में आप कुआं खोदना आरंभ कर रहे हो, यह तो मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पहले से ही कुआं खोद कर रखता है और तैयार रहता है कि जब आग लगे तब किस तरह जल का प्रयोग उस अग्नि के शमन के लिए किया जा सके। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मानव जीवन में अपने आत्मा के भलाई के लिए, उद्धार के लिए पूर्व से ही प्रयास करके तैयार रहे। जब मृत्यु आए, वह उचित प्रयास के माध्यम से भगवान तक पहुंच जाए। और इसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध में सुंदर विवरण आता है अजामिल का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। और इस प्रसंग के माध्यम से क्लेश के निवारण अथवा समाधान का उपाय हम प्राप्त करते हैं। इस कथा को सभी ध्यानपूर्वक सुने। इस कथा में अनेक उपदेशक ऐसे प्रसंग आएंगे जिससे हमारा जीवन पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो सकता है, सुधर सकता है, बदल सकता है। हमारे जीवन की दिशा बदलने के लिए अनेक ऐसे तत्व इस प्रसंग में सन्निहित हैं। वर्णन आता है कि अजामिल एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति था, लेकिन अपनी एक वैश्या पत्नी के साथ जीवन यापन करते हुए अनेक अनेक संतान पैदा किए। अपने परिवार के जीवन यापन के लिए उसने अनेक प्रयत्न किए और घर परिवार के पोषण के लिए वह चोरी, डकैती, लूटमारी, हर प्रकार से पापपूर्ण कृत्यों का आश्रय लेता था। इस प्रकार वह अनेक अनेक पाप करता हुआ जीवन यापन कर रहा था। और जब 88 वर्ष की उसकी आयु हुई तो उसका एक छोटा सा पुत्र हुआ। और वर्णन आता है तस्य प्रत्यवयस् पुत्र दशतेषां तु यौवम बालनारायण नामना पित्रोव दैतभृशम्। तस्य प्रत्यवय पुत्राः। जब अजामिल बहुत ही वयोवृद्ध हो गया था, जब अजामिल बहुत बूढ़ा हो चला था, तस्य प्रत्यवस पुत्र अर्थात इस अवस्था में उसे अपने इंद्र तृप्ति के कार्यों को परित्याग कर भगवत भक्ति में मन को एकाग्रचित करना था, लेकिन ऐसी बड़ी हुई आयु में भी वह इस प्रकार के कार्यों में लीन था। अर्थात ये शब्द उसके इंद्र तृप्ति के एक सूचक है। और वर्णन आता है दशतेषां तु यौवम, तब तक उसके 10 पुत्र हो चुके थे और 10वां और अंतिम पुत्र हुआ जो सबसे छोटा था। और उस समय वर्णन आता है अजामिल इतना पापी था, इतना नीच और कमीना था। एक महान संत पुरुष एक बार अपने किसी मित्र के साथ चर्चा कर रहे थे। ये संत पुरुष, ये भगवान के भक्त वर्णन कर रहे थे कि मेरे देह पर इतने सारे बाल हैं कि उससे मुझे खुजली हो रही है, इस खुजली के निवारण का कोई मार्ग बताइए मित्र। तो उनके मित्र ने उन्हें बताया इस खुजली से बचने के लिए, इस त्वचा रोग से बचने के लिए किसी महापापी का उच्छिष्ट खाओगे, स्वीकार करोगे तो ये त्वचा रोग का निवारण तत्क्षण हो जाएगा। और ऐसा एक महापापी है अजामिल, तुरंत उसके घर पर जाओ और उसके उच्छिष्ट को स्वीकार करो। दोस्त के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ये ऋषि अजामिल के घर में प्रवेश किए। उस समय अजामिल घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी थी। बड़े प्रेम से उनके वैश्या पत्नी ने इस ऋषि का स्वागत सत्कार किया, आव भगत की, पाद प्रक्षालन किया, सुस्वाद व्यंजन परोसे। ऋषि ने कहा मुझे यह व्यंजन नहीं चाहिए, मुझे आपके पति अजामिल का उच्छिष्ट चाहिए। पत्नी कुछ अवाक रह गई, आश्चर्यचकित हो गई, मेरे पति अजामिल उसका उच्छिष्ट आपको चाहिए? फिर भी विचार किया कि महान भक्तों के मन की बात समझना बहुत कठिन है, इस प्रकार से वो आग्रह कर रहे हैं तो इच्छा की पूर्ति करें। ये लेकिन प्रकारेण अपने पति के जो उच्छिष्ट थे वो थोड़े बहुत ले आई और उनको परोस दी। और महात्मा जी उस उच्छिष्ट को स्वीकार करने के पश्चात घर से बाहर निकल पड़े, निकास के मार्ग से वो बाहर जा ही रहे थे तब उन्होंने अनुभव किया कि उनके पूरे देह में जो त्वचा रोग थी, जो खुजली थी, वो धीरे धीरे मिट रही थी, उसका निवारण हो रहा था। उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा, प्रसन्न हो गए कि अरे दीर्घ काल से मैं इस त्वचा रोग से परेशान था, केवल अजामिल के इस उच्छिष्ट को स्वीकार कर अब मैं इस रोग से मुक्त हो गया। यो न हो अवश्य मुझे इस परिवार का कुछ भला करना चाहिए। और ऐसा विचार करते हुए ये ऋषि वापस पुनः लौट कर आए और शने शने उस घर के निकट आ गए। अजामिल के घर में फिर प्रवेश किया। अजामिल की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई, अरे महात्मा जी आप फिर लौट कर आ गए, क्या बात है? तो ऋषिवर ने कहा, मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूं। उस समय अजामिल की पत्नी अपने सबसे छोटे पुत्र को लेकर गोद में लिए उसे दुलार रही थी। ऋषि ने छोटे से बच्चे को देखा और पूछा, इस बच्चे का नामकरण हुआ है क्या? मां ने कहा, हां हुआ है, और कोई नाम बता दिया। ऋषि ने कहा, ये नाम मत रखो, बहुत सुंदर नाम मैं आपको देता हूं, इस बच्चे का नाम नारायण रखो। इस बच्चे का नाम नारायण रखो, भला होगा आपका। इस प्रकार कहकर ऋषि वहां से निकल पड़े। अर्थात महान भक्तों का हस्ताक्षेप जीवन में केवल शुभ के लिए ही होता है। महान भक्तगण भूत वर्तमान और भविष्य के विषय में सब कुछ जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, और उनके संपर्क मात्र में आने से हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधु नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले न माणिक्यम, अरे सीपी सीपी में मोती नहीं प्राप्त होती, करोड़ों करोड़ों सीपियों में कोई एक विरले सीपी है जिसमें मोती प्राप्त होती है। मौक्तिकम न गजे गजे, अरे करोड़ों करोड़ों हाथी हैं, लेकिन जो हाथी सामान्य रूप से काम का बहुत बड़ा दास होता है, जब वह अपने इंद्रियों को निग्रह कर ले और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, तो उसका वीर जब उसके मस्तक पर जाता है तो उससे एक सुंदर मणि तैयार होती है। अर्थात हाथियां हजारों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन हर हाथी के सिर पर मणि नहीं प्राप्त होती। वन अनेक है, लेकिन प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाए जाते। साधु नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने, उसी प्रकार जन सामान्य अनेक हैं, नाना प्रकार के लोग जगत में पाए जाते हैं, लेकिन साधुओं को ढूंढ पाना बहुत कठिन है। इसलिए जहां कहां साधु का संग प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करना चाहिए, जीवन की दिशा बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए महान साधुगण डॉक्टर की तरह होते हैं, ऐसे कुछ दवा पिला जाते हैं जिससे भविष्य में हमारा स्वास्थ्य सुधर जाए। भले पेशेंट छोटा सा अबोध बालक हो, उसके अंदर ज्ञान न हो कि कड़वी दवा क्यों दी जा रही है, लेकिन साधुओं को इस बात का ज्ञान होता है। अजामिल की पत्नी समझ नहीं पाई कि इस प्रकार से ये नारायण नाम क्यों दिया गया, लेकिन वह साधु भली भांति जानते थे कि किस प्रकार अजामिल का इससे भला होने वाला है। इसलिए वर्णन आता है, बाल नारायण नाम नाम पित्रोश्च दैत भृशाम। उस बच्चे का नाम था नारायण, और पित्रोश्च माता और पिता को दैत भृशम, अत्यधिक प्यारा था, दुलारा था, और माता पिता दोनों बड़े प्रेम करते थे नारायण से। किस प्रकार वह प्रेम करते थे इसका वर्णन आता है, उसकी तोतली बोली और लड़खड़ाती हुई चाल के पीछे ये दोनों माता पिता पागल थे, और प्रत्येक क्षण अजामिल उसके साथ खेलने का प्रयास करता। और वर्णन आता है, भुंजाना प्रपिबन खादम बालकम स्नेह यंत्रितम भोजयन पायन मूढ़ो समक्ष। इस प्रकार बारंबार वह अपने पुत्र नारायण को पुकारता था, नारायण नारायण नारायण, प्रतिक्षण उसके जीवन में नारायण के नाम की गूंज उठती थी। अजामिल स्वयं नहीं जानता था कि इस प्रकार नारायण के नाम के उच्च स्वर के कीर्तन से उसको क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान इस बात को जानते थे। भोजयन पायन मूढ़ो नवेद आगत मंतकम। और वह नहीं जानता था कि बहुत ही शीघ्र उसकी मृत्यु होने वाली है। और श्री पंपा जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि अजामिल जब बारंबार इस प्रकार नारायण के नाम का उच्च स्वर में उच्चारण कर रहा था, ये वास्तव में अज्ञात सुकृति थी। अनजाने में उसे अनेक प्रकार की सुकृतियां प्राप्त हो रही थी। अज्ञात सुकृति अर्थात कोई भक्तमय कार्य करो लेकिन उसके विषय में हमें जानकारी न हो, लेकिन फिर भी हमारे अकाउंट में वह एंटर हो जाता है। भगवान इस बात को देखते हैं। यदि विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि भगवान के विग्रह के सामने एक दीप रखा हुआ था और उस दीप में जो अग्नि शिखा थी वो धीरे धीरे बुझ रही थी, और तब एक चूहा घूमता हुआ वहां भगवान के मंडप में आ गया और उसने उस अग्नि शिखा को देखा और उसके प्रति आकर्षित हुआ और उसके भीतर घी को चखने के लिए जब उसने अपना मुख उसमें अंदर डाला, तब जैसे वो अग्नि शिखा बुझ रही थी, जो उसकी मूंछ थी, जो बाल थे उसके मुंह के आसपास, उसमें आग लग गया। और जब आग लग गया तो भयभीत होकर वह चूहा अपना मुंह ये हिला दिया और जलते हुए आग को इस तरह घुमाया तो आरती करने का उसको लाभ प्राप्त हो गया और तुरंत उस चूहे की मुक्ति हो गई। इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति। उसी प्रकार अजामिल बारंबार नारायण का नाम ले रहा था लेकिन वह जानता नहीं था कि उसकी सुकृतियां बढ़ रही हैं। तो वहां आता है जब अजामिल इस प्रकार मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, वो जानता नहीं था कि मृत्यु आने वाली है। उस समय अकस्मात एक दिन की बात है, स एवं वर्तमान अज्ञा मृत्यु काले उपस्थित है। अब मृत्यु की वह घड़ी आ गई थी जो प्रत्येक जीव को अपने जीवन में देखना ही पड़ता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एज श्योर एज डेथ, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, मृत्यु की पुकार को वो नकार ही सकता। चाहे कितना बड़ी चक्रवर्ती सम्राट नरेश क्यों न हो, जब मृत्यु का बुलावा आता है तो हम सभी को वहां उपस्थित होना ही पड़ता है। स एवं वर्तमानोपि, वह अपने वर्तमान के जीवन में पूरी तरह व्यस्त खेलता हुआ अय्याशी करता हुआ जीवन यापन कर रहा था। मृत्यु काले उपस्थित है, और मृत्यु का काल उनके समक्ष उपस्थित हो गया। और ऐसी परिस्थिति में बेचारा वो क्या करता। मतिं चकार तनये बाले नारायण वहे। उस समय अचानक उन्होंने देखा कि जब मृत्यु आ रही है, मतिं चकार तनये, उनकी मति पूरी तरह से एकाग्रचित हो गई तनये अपने पुत्र पर, बाले नारायण वहे। अजामिल अपने सबसे छोटे पुत्र से इतना प्रेम करता था कि मृत्यु के समय केवल उनका ही चिंतन करने लगा। यह महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार का जीवन हम यापन करेंगे, जिस प्रकार की आसक्तियां हम अपने जीवन में उपलब्ध करेंगे, उन सभी आसक्तियों का तालमेल मृत्यु के समय हमारे मन में होता है। वर्णन आता है कि एक सेठ जी थे, जीवन भर उन्होंने केवल व्यवसाय ही किया था। बड़ी सी उनकी दुकान थी, दुकान से बहुत आसक्त थे, दिन रात केवल दुकान के चलाने के विषय में विचार किया करते थे। अचानक मृत्यु की घड़ी आ गई, मृत्युशैया पर लेटे थे, उनके सब निकट के संबंधी चारों तरफ घेर लिए, ठीक से देख नहीं पा रहे थे, दृष्टि कुछ धुंधला गई थी, तो अचानक जोर से कहने लगे उच्च स्वर में, अरे मेरी पत्नी कहाँ है? तो उसकी पत्नी कह रही है कि मैं यहां हूं जी। अच्छा अच्छा आप यहां हो, और कौन है यहां पर? तो पत्नी कहने लगी देखिए आपका बेटा भी है, आपका ज्येष्ठ बेटा यहीं पर है। अच्छा और कौन है? और उसकी पत्नी वो भी यहीं पर है, आपकी बड़ी बहू यहीं पर है। अरे बहुत अच्छा, और कौन है? और आपका दूसरा बेटा वो भी यहां पर है। अच्छा बहुत अच्छे, और कौन है? और तुम्हारा तीसरा बेटा वो भी यहीं पर है। तो बहुत अच्छे, और कौन है? और जो बेटी है हमारी जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी यहीं पर है। तो इस बुरे व्यक्ति ने कहा अरे सब लोग यहीं पर हैं तो दुकान पर कौन है? अर्थात मृत्यु होने जा रही है किसी भी क्षण, लेकिन फिर भी मन में विचार आ रहा है केवल दुकान का, क्योंकि जीवन भर जो आदतें पाली हैं मृत्यु के घड़ी में भी वही तो मन में आएगा ना। एक बुरे व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यवसायी थे, जीवन भर केवल बिजनेस किया था और कुछ नहीं किया। उनके तीन पुत्र थे, तीनों ने मिलकर ये विचार किया कि पिता को धर्म के काम में लगाना चाहिए। एक साधु को बुलाया, कुछ पैसे दिए, साधु को कहा कि पिता को लेकर जाओ और तीर्थयात्रा करते रहो, और यदि पैसा और लगे तो मंगवा लेना, लेकिन वापस मत लेके आना इनको। तो साधु के इस कहने पर, पुत्र के कहने पर साधु पिता को लेकर चले गए। अलग अलग तीर्थयात्रा करते हुए विविध स्थानों से होते हुए गए, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा, काशी, हरिद्वार, यहां सब जाते हुए अंततो गत्वा बद्रीनाथ तक पहुंच गए। और फिर भी उन्होंने देखा कि इस बुरे व्यक्ति के हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा, उसके हृदय में कोई भक्ति की भावना जागृत नहीं हो रही, कोई आध्यात्म के प्रति वह रुचि प्रकट नहीं कर रहा है। तो बेचारा साधु भी कुछ हताश होने लगा, इतने सारे तीर्थ यात्रा में इसको करा चुका, तीर्थ स्थान के दर्शन करा चुका, अरे अब तक तो कुछ हृदय पिघलना चाहिए। तो उसने निश्चय किया कि चलो यहां पर तो कुछ हो नहीं रहा, काशी में वो लेकर आए उन्हें, और वहां के जो घाट थे जहां पर दाह संस्कार होता है, तो ऐसे शमशान भूमि वो लेकर चले गए उनको। और शमशान भूमि में लेकर गए और देखा कि वहां पर अनेक शव, मृत शव जलाए जा रहे थे, और जलते हुए शवों को देखकर अचानक इस बूढ़े व्यवसायी, बूढ़े व्यक्ति की आंखों से, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तो साधु प्रसन्न हुआ कि चलो इतनी देर तक मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था, कुछ हृदय पर असर नहीं हुआ, अब इसके हृदय पर महाभयंकर असर हुआ है। प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए, अब मैं सफल हुआ। पूछे बताइए जी, सेठ जी अब आपको क्या लग रहा है? ये देखकर आपके हृदय में क्या भावनाएं जागृत हो रही हैं, जरा बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। सेठ जी ने कहा बस मेरे जीवन में यही दुख रह गया, मैं जीवन भर कपड़े का धंधा करता रहा, लेकिन यदि पता होता कि लकड़ी की इतनी डिमांड थी तो लकड़ी का धंधा किया होता, लेकिन मैं इस बात से वंचित रह गया, किसी ने मुझे ज्ञान नहीं दिया, इसलिए मैं रो रहा हूं कि गलत धंधा कर बैठा जीवन भर। क्योंकि जीवन भर व्यवसाय ही किया तो मृत्यु के समय भी, किसी भी आयु में भी, बस विचारधारा वही बनी रहेगी जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए जीवन की दिशा को परिवर्तित करने का कुछ प्रयास करना चाहिए, अन्यथा जीवन अकस्मात अपने आप स्वयमेव परिवर्तित नहीं होता। जब हम दिशा बदलने का प्रयास करेंगे तब हमारी आदतें कुछ बदलेंगी। तो यहां पर क्योंकि अजामिल अपने पुत्र से निरंतर आसक्त थे, स्वाभाविक रूप से उनका मन भी अपने पुत्र की ओर चला गया, और वर्णन आ रहा है मतिं चकार तनये बाले नारायण हुए। मृत्यु के समय वेदना बहुत भयंकर होती है, वर्णन आता है गरुड़ पुराण में 40,000 बिच्छुओं के डंक के बराबर वेदना होती है। सर्प के डंक में और बिच्छू के डंक में अंतर यह है कि सर्प अपने विष के प्रभाव से किसी को धाराशायी करता है, और बिच्छू केवल अपने डंक की वेदना से ही व्यक्ति को मार देता है। इतनी वेदना होती है, इतना कष्ट होता है
कि उससे वह थर थर कांपता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये एक बिच्छू के डंक की बात है, मृत्यु के समय 40,000 बिच्छुओं के डंक के बराबर वेदना होती है। तो इस प्रकार जब अजामिल मृत्युशैया पर आसीन था, ऐसे मरणासन्न अवस्था में अचानक उन्होंने अपने मुखों के सामने तीन महाभयंकर भयावह पुरुषों को देखा, और उसका वर्णन आ रहा है, सपाश हस्तान त्रिन दृष्ट्वा पुरुषान अति दारुणान वक्रतुंडान रो महर्षो आत्मानम नैकमागतम। सपाश हस्तान त्रीन, ये तीन यमदूत उपस्थित थे, हाथ में यमपाश थे। पुरुषान अति दारुणान, और दिखने में बड़े भयंकर लग रहे थे, खौफनाक लग रहे थे। वक्रतुंडान रो मनोमनो, और उनका देह पूरा वक्र था, और ऊर्ध्व रोमन, देह का रोम पूरी तरह खड़ा हुआ था, जैसे किसी को बिजली का झटका लग जाए तो किस तरह रोमांच खड़े हो जाएंगे, उसी प्रकार उनके सारे रोम खड़े हुए थे। और आत्मानं नहीं तुमागतान, और नेत्र भी उनके बड़े भयंकर थे, और वह अजामिल की आत्मा को लेने आए थे। अजामिल को गंभीरता पूर्वक वह देख रहे थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अजामिल को कोई संदेश देना चाहते थे। अजामिल तो बिस्तर से मत हिल, वैश्य को तूने दिया है दिल, अब तुझे भरना पड़ेगा बिल, अब चल यमराज से मिल, अब पिलाएंगे तुझे कड़वा पिल। और इस तरह वो नेत्रों से घूर घूर कर देख रहे थे अजामिल को, और अजामिल बेचारा इतने जोर से चीख पड़ा, क्योंकि वो समझ गया कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। ये यमदूत उसके हृदय के भीतर से उसकी आत्मा को खींच कर ले जाएंगे। और तो वर्णन आता है, दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणुच्चै आजुहा वाकुलेन्द्रिय। दूर ही उसका पुत्र नारायण खेल रहा था, दूरे क्रीडन का सप्तम बाले नारायण वहे। अजामिल चिल्लाने लगा, नारायण 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 बचाओ नारायण, क्योंकि अजामिल अपने पुत्र से आसक्त था, अपने पुत्र को पुकार रहा था। प्लावितेन, और उनके अश्रुधारा बह रही थी, और वह व्याकुल था, विमोहित था, भयभीत अवस्था में वह अपने पुत्र को निस्सहाय भावना से पुकार रहा था। प्लावितेन स्वरेण चई आजुहा वाकुलेन्द्रिय। इस प्रकार अजामिल नारायण नारायण की पुकार लगा रहा था, और उसका पुत्र नारायण निकटवर्ती समीपवर्ती खेल रहा था। उसको क्या पता कि नारायण की पुकार क्यों लगी थी। ऐसी अवस्था में जब अजामिल ने निस्सहाय भावना से भगवान श्री नारायण का नाम लिया, परोक्ष रूप से उन्होंने भगवान का नाम लिया, तो इस समय वर्णन आता है, अचानक केवल नारायण के नाम के उच्चारण करने मात्र से वहां एक ऐसी महान परिस्थिति उठ खड़ी हुई। और वो क्या थी, वर्णन आता है, निशम्य म्रियमानस्य मुखतो हरि कीर्तनम। निशम्य सुनकर श्रवण करके म्रियमानस्य मरणासन्न अवस्था में अजामिल की मृत्यु पुकार को सुनकर क्या हुआ, मुखतो हरि कीर्तनम, हरि कीर्तन सुनकर वहां कुछ विशेष महापुरुष उपस्थित हो गए। कौन थे वो, भर्तुर नामना महाराज पार्षदा सह पाठयन।
भर्तुर नाम अपने स्वामी का नाम सुनकर भर्तुर नाम महाराज कौन आ गए वहां पर पार्षदा सहसा पतन सहसा अचानक अकस्मात पार्षदा आपतन भगवान श्री विष्णु के पार्षद वहां उपस्थित हो गए। चार विष्णुदूत अपने हाथ में शंख चक्र और गदा धारण किए वहां उपस्थित हो गए और वर्णन आता है कि तीन यमदूत उपस्थित हुए थे। अजामिल ने पूरे जीवन भर अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों पाप पूर्ण कृत्य किए थे और वह पाप मुख से शरीर से और मन से करता था। मनसा वाचा काया हम अनेक अनेक पाप करते हैं, इन पापों का अकाउंट यमदूत रखते हैं। तो तीन यमदूत आते हैं, करोड़ों पापों का अकाउंट लेने के लिए तीन यमदूत आए और अजामिल ने केवल चार अक्षर लिए नारायण और प्रत्येक अक्षर के बदले में एक एक विष्णुदूत आ गया। अर्थात करोड़ों करोड़ों जन्मों के यदि हमारे पाप हो तो भी तीन यमदूत ही अधिक से अधिक आते हैं और केवल एक बार उच्च स्वर में नारायण लो तो प्रत्येक अक्षर के लिए एक एक विष्णुदूत आपके समक्ष उपस्थित होकर आपकी रक्षा हेतु भरपूर प्रयत्न करते हैं। बोलो भगवान नारायण की। अर्थात इससे श्रेष्ठ सुरक्षा का प्रबंध और क्या हो सकता है। और यहां वर्णन आ रहा है कि अजामिल निस्सहाय भावना में उच्च स्वर में चिल्ला रहा था और अब विष्णुदूत अकस्मात आ गए और उनके देह की अंग कांति उस स्थान के अंधकार को दूर कर रही थी। उनके देह से ऐसा प्रकाश तेज फैल रहा था कि उसको देखकर यमदूतों के भी नेत्र चकाचौंध हो रहे थे, वो भी विस्मित थे इस दृश्य को देखकर। और उस समय यमदूत अजामिल के आत्मा को उसके हृदय से निकालने का प्रयास कर रहे थे और तभी गरजती हुई ध्वनि में अचानक ये विष्णुदूत कहने लगे रुको ठहरो ऐसा मत करो। जब इस प्रकार से उन्होंने हस्ताक्षेप किया तो यमदूत भी कुछ भ्रमित हो गए, विस्मित हो गए कि हमारे कार्य में इस प्रकार से हस्ताक्षेप कौन कर रहा है, कौन बाधा डाल रहा है हमारे कार्य में, किसकी औकात है ये, यमराज के दूत हैं हम, यमराज के प्रतिनिधि हैं हम, पूरे ब्रह्मांड में धर्म का उत्तरदायित्व जिनका है उनके निजी पार्षद हैं हम, उनका अधिकार प्राप्त करके ही उनके नियमों के अनुसार हम ये कार्य कर रहे हैं, निष्पक्ष रूप से जो न्याय का पूरी तरह से अवलोकन करते हैं, ऐसे यमराज के कार्य में कोई रुकावट डाले बाधा डाले ये तो निस्सहाय असहनीय बात है। और इस प्रकार ये यमदूत विस्मित थे तो उन्होंने विष्णुदूतों से प्रश्न किया और वो कहने लगे महाशय कौन है आप, अरे आप कहां से आए हैं, यमराज के अधिकार क्षेत्र में आप इस प्रकार हस्ताक्षेप क्यों कर रहे हैं, क्या आप जानते नहीं कि वास्तव में आप यमराज के अधिकार को ललकारने की धृष्टता कर रहे हैं, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, और दूसरी बात आप आए कहां से हैं, आपका एड्रेस क्या है, निवास स्थान क्या है, कहां से आप लोग आए हो, कस्य वाकुत आयातः कस्य आगतस्य निषेधतः, आपको किसने भेजा है, किसके दूत हैं आप, यहां अकस्मात क्या कर रहे हो, आपके यहां आने का कारण क्या है। और फिर वो कहने लगे कि आपके इस रूप रंग सज्जा को देखकर, आपके रूप लावण्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई सामान्य मानव नहीं हो, आप सिद्धों में श्रेष्ठ हो, सिद्ध सप्तम हो, और आपका रूप लावण्य इतना सुंदर है, मनमोहक है, मनोहर है कि अवश्य ही आपको किसी असामान्य व्यक्ति ने भेजा होगा। सद सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा, किरीटना कुंडलिनो लसत पंकज मालिना।
आप सभी के नेत्र पद्म के सुंदर पंखुड़ी की तरह खिले हुए हैं।
सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौसे वास,
और आपके वस्त्र भी पीले रेशमी रंग के बिजली की तरह चमक रहे हैं।
किरीटिनो कुंडलिनो,
और मस्तक पर सुंदर किरीट है, मुकुट है, कुंडल है कानों में।
लसत पंकज मालिना,
और आपके देह पर सुंदर कमल का हार चमक रहा है।
लसत पंकज मालिना,
और आपके देह की अंग कांति चारों दिशाओं में व्याप्त है और इस अंधकार को दूर कर रही है। अरे तेजस्वी मानव, आप कौन हो, कहां से आए हो, और आप इस प्रकार से हमारे कार्य में बाधा क्यों डाल रहे हो? तो यह समझना बहुत आवश्यक है कि नारायण भगवान के दूत विष्णु दूत दिखने में बिल्कुल नारायण की तरह ही दिखते हैं। चतुर्भुज धारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त, सुंदर पीले वस्त्र, मुकुट, कर्ण में कुंडल, फूल मालाएं इत्यादि, कोई दूर से देखे तो ऐसा प्रतीत होगा मानो भगवान श्री विष्णु ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अर्थात जो देखने में बिल्कुल भगवान विष्णु के सदृश हो, ऐसे विष्णुदूत होते हैं। लेकिन महत्व की बात यह है कि विष्णु के सदृश दिखते हुए भी कभी यह विष्णुदूत स्वयं को नारायण नहीं कहलाते, स्वयं को नारायण घोषित नहीं करते, निरंतर नारायण के दास, विष्णु के दास, विष्णु दूत कहलाते हैं। अपना परिचय वो विष्णु दूत देते हैं। और इस जगत में अनेक ऐसे धूर्त हैं जो कि केवल दो हस्त लिए हुए हैं और केवल इस पंच महाभूत के देह को धारण किए हुए हैं, लेकिन इतने धूर्त हैं कि फिर भी स्वयं को विष्णु घोषित करते हैं। अर्थात कभी भी जीव भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकता, चाहे वो वैकुंठ में स्थित सारूप्य मुक्ति भी क्यों प्राप्त न कर ले। विष्णु दूतों का रूप साक्षात विष्णु की तरह ही दिखता है। अंतर केवल इतना है कि भगवान श्री लक्ष्मी के श्रीवत्स का चिन्ह उनके वक्ष स्थल पर नहीं होता। तो धिक्कार है उन पर जो इस भौतिक जगत में कलयुग में नाना प्रकार से लोगों की आंखों में नेत्र में धूल झोंकते हुए स्वयं को भगवान घोषित करते हैं, विष्णु घोषित करते हैं, नारायण घोषित करते हैं। धिक्कार है उन पर जब विष्णुदूत स्वयं पूरी तरह भगवान के सदृश दिखते हुए भी स्वयं को विष्णु का दास बतलाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, एक ऐसे गुरु के पास गए थे जो भगवान बनने का उनको एक मार्ग बताता था, और एक उसने मंत्र दिया सोहम, और कहने लगा शिष्य को, देख रोज तुझे जप करना है सोहम। सोहम अर्थात अब मैं वह भगवान बन जाऊंगा, मैं वही भगवान हूं, सो हम, मैं अब वह बन जाऊंगा, वह भगवान बन जाऊंगा। तो ये बेचारे ये सज्जन बैठकर सोहम 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 जप कर रहे थे। उस समय वहां पर एक वैष्णव आए, और वैष्णव वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बेचारा बैठकर सोहम सोहम कर रहा, दया आई। वैष्णव ने कहा, अरे क्या ये सोहम सोहम कर रहा है, पता नहीं इससे भी एक बहुत अच्छा मंत्र है, ये सबसे ऊंचा मंत्र नहीं है? बोला, अच्छा इससे अच्छा मंत्र क्या है? वैष्णव ने कहा, ये सोहम के आगे एक दा लगा दो, दा, एक दा लगा दोगे सब ठीक हो जाएगा। तो बोला ठीक है, दा लगा देते हैं, उसमें क्या है, मुझे तो नए नए मंत्र बोलने में वैसे अच्छा लगता है। दा लगा दिया, फिर जपने लगे दा सोहम दासोहम दासोहम दासोहम, मैं उनका दास हूं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका दास हूं। कभी पहले गुरु आके देखे कि चेला मंत्र को चेंज करके गा रहा है, गुरु बोले क्या चल रहा है नालायक, मैंने तो ये मंत्र दिया था, ये क्या बदल दिया? बोले क्या करूं, एक मेरा पुराना मित्र मिल गया था, उसने कहा एक दा लगा दो, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, सबको संतुष्ट रखना चाहता हूं, तो उसने दा कहा, मैंने दा जोड़ दिया, आप और कुछ बोलते तो वो भी जोड़ देता हूं। तो गुरु ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पुराना मंत्र नहीं जपोगे कोई बात नहीं, एक स और इसमें लगा दो, एक स इसमें जोड़ दो और, तो बन जाता है सदा सोहम, सदा सोहम, सदा सोहम, सदा के लिए मैं वो भगवान हूं, सदा के लिए मैं भगवान था, सदा के लिए भगवान रहूंगा, सदा सोहम, सदा सोहम। इस तरह वो बोल रहे थे, कभी वो वैष्णव फिर आ गए, बोले अरे फिर ये क्या जोड़ दिया, ये सदा सदा कहां से आ गया, नहीं नहीं क्या करूं, गुरुजी फिर आए थे, फिर उन्होंने कहा तो उनको भी मैं दुखी नहीं कर सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता। बोले अच्छा कोई बात नहीं, कुछ जोड़ तो सकते हो ना, जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल एक और दा लगा दे, एक और दा लगाते तो बन गया दास दासोहम, दास दासोहम, दास दासोहम। और यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि वो अंततः गत्वा दास ही बन गया और भगवान का भक्त बन गया। अर्थात जीव कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास है, और कभी जीव कृष्ण या विष्णु नहीं बन सकता। और इसका प्रमाण है कि विष्णु स्वयं शंख चक्र गदा पद्म और अन्य सारे आभूषण और वैसा ही रूप लेकर आते हैं, लेकिन कभी स्वयं को विष्णु के सदृश, विष्णु के स्वयं बराबर रूप में कभी अपने आप को घोषित नहीं करते। और इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है कि प्रश्न किए जाने पर विष्णु उत्तर देते हैं यमदूतों को, देयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिण मृत धर्मस्य न तत्त्वं यच्चा धर्मस्य लक्षणम्। अरे यमदूतों, यदि आप वास्तव में यमराज के दूत हो, येयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिण, और उसके निर्देश कारण हो, उनके निर्देशों का पालन कर रहे हो, तो कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मृत धर्म से न तत्वम, धर्म का तत्व क्या है, यच्चा धर्म से लक्षणम, और अधर्म का लक्षण क्या है, दंड का मार्ग क्या है, दंड की क्रिया क्या है, दंड के पात्र कौन है, जो प्रत्येक व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है वो सारे व्यक्ति क्या धर्म के भागी हैं, दंड के भागी हैं, किसे दंड दिया जाना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, इसके पीछे क्या नियम है। येयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण, निर्देशकारिण अर्थात जो अपने स्वामी के निर्देश का पालन करे, अर्थात जो अपने स्वामी के मंतव्य के विषय में ज्ञान रखे, जो अपने स्वामी के मिशन का ज्ञान रखे। और ये महत्वपूर्ण शब्द है, जो कोई भी किसी मिशन में हो, सेवा कर रहा हो, उसे अपने स्वामी के मिशन का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी भी समय किसी भी वक्त कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न कर सकता है, आप इस मिशन में हो, आपके स्वामी ये हैं, इनका फिलॉसफी क्या है, इनका सिद्धांत क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, इनका मार्ग क्या है, आप ये सब क्यों कर रहे हो, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। अर्थात यहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि विष्णुदूतों का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यमदूत यमराज के दास हैं, यमराज के मिशन में हैं, तो उनको जानना चाहिए कि उनके स्वामी यमराज का मिशन क्या है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जितने भक्तगण हैं, जो श्रील प्रभुपाद और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मिशन से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस मिशन की जानकारी होनी चाहिए कि हम यहां भक्ति में क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का उद्देश्य क्या है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, और कई बार भक्तगण किताब वितरण करते समय लोग प्रश्न करते हैं, और किताब वितरण करते समय आप ये नहीं कह सकते किताब के बारे में मैं नहीं जानता, मैं केवल बांटता हूं, मैं पढ़ता नहीं। इस हरिनाम के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है, और वो पूछे क्या फिलॉसफी है, आप पीछे जाके आप ही देख लो, हम नहीं जानते इसके पीछे क्या फिलॉसफी है। एक भक्त एक बार किताब वितरण कर रहे थे, और धूप में खड़े होकर वितरण कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था लेकिन जबरदस्ती वो वितरण कर रहे हैं, चेहरा बिल्कुल मायूस था, हताश थे, निराश लग रहे थे, और दोस्त से बुक ले रहा था, उसको कह रहे थे लो भगवद गीता लो, जीवन बदल जाएगा, सुखी हो जाओगे। तो कहने लगा तुम क्यों इतना दुखी लग रहे हो, अगर इसको पढ़कर कोई सुखी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। अर्थात निर्देश कारिण। जब कोई स्वामी का निर्देश पालन करे तो स्वामी के मिशन का ज्ञान होना चाहिए। एक वैज्ञानिक था, उसने अपना एक ड्राइवर रखा था। ड्राइवर रोज वैज्ञानिक को यहां से वहां लेकर जाता, और उस समय वैज्ञानिक का एक थीसिस बहुत ही लोकप्रिय हो गया था। हर जगह वो जाकर अपना वो पेपर प्रेजेंट करता था, और गाड़ी में पीछे बैठा हुआ वह जोर जोर से रिहर्सल करता था कि अब मैं क्या प्रस्तुत करने वाला हूं पेपर। और क्योंकि हर शहर में हर गांव में वो घूमता हुआ ड्राइवर जाता था, तो बार बार सुन सुनकर उसको वो थीसिस वो पेपर पूरा याद हो गया था, पूरा रट गया था, क्योंकि वो वैज्ञानिक पीछे बैठकर निरंतर वही बोलता रहता था। एक दिन जब वह गाड़ी चला रहा था, अचानक वो रिहर्सल करते करते वैज्ञानिक बीच में अटक गया, तो ड्राइवर सामने गाड़ी चलाते चलाते आगे का जो पार्ट था वो बोल दिया। तो वैज्ञानिक बोले, अरे कमाल है, तुमको याद है क्या, ये जो थीसिस है तुमको याद हो गया। वैज्ञानिक बोला, अभी क्या करेंगे, क्या बैठ के वही तो मैं रट रहा हूं रोज रोज, दिन रात आप वही बोलते रहते हो। तो वैज्ञानिक कहा, ठीक है ऐसा करते हैं, अभी जो अगला कॉन्फ्रेंस है मैं बहुत थक गया हूं, तुम जाके मेरा पेपर प्रेजेंट कर दो और मैं थोड़ा विश्राम करता हूं गाड़ी में, बहुत थक गया हूं। ड्राइवर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी एक नया अनुभव होगा। ऐसा कहकर ड्राइवर अंदर कॉन्फ्रेंस में चला गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, और जो कुछ भी इसने रटा रटाया था सबके सामने आए, और बड़े प्रभावशाली ढंग से जो जो रटंत विद्या थी पूरा सुना दिया, और खूब तालियां बजी। और उसके बाद प्रश्न उत्तर की बारी आई, और ड्राइवर को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, कॉन्फ्रेंस में प्रश्न उत्तर भी होता है। तो एक बड़े वैज्ञानिक खड़े हुए और एक लंबा चौड़ा प्रश्न कर दिया, और ये ऐसा प्रश्न था कि इनको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ये तो ड्राइवर ही थे, केवल उनको रटंत विद्या थी, वो तो सुना दी थी, उनका स्टॉक खत्म हो गया था। अब प्रश्न भी उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रश्न किया उसने कहा, अच्छा आपका ये प्रश्न है, अरे ये प्रश्न तो इतना आसान है कि मेरा ड्राइवर जो बाहर बैठा है वो भी इसका उत्तर दे देगा, उसको बुला लाओ जाओ। अर्थात जब व्यक्ति के पास केवल रटंत विद्या हो वो अपने स्वामी के मिशन को भलाभर नहीं जान सकता, और प्रश्न किए जाने पर उसका उत्तर नहीं दे सकता। तो भक्तों को शिला प्रभुपाद के ग्रंथों को इस प्रकार पढ़ना चाहिए कि उस ग्रंथ का निचोड़ हमारे पास होना चाहिए, न केवल केवल रटा हुआ ज्ञान, जिससे कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रश्न किए जाने पर हम वास्तव में शिला प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के सार तत्व को दूसरों को प्रस्तुत कर सकें, और हर परिस्थिति में हम संतोषजनक उत्तर दे सकें। तब जाकर हम इस महान संप्रदाय के गौरव गरिमा को कायम रख सकते हैं। और इसलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि विष्णु दूतों का ये प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है। एवं वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कारिण, यदि आप धर्मराज के निर्देश कारिण हो, धर्म अधर्म क्या है इसमें भेदभाव आप भली भांति जानते होंगे, बताइए। तो इसके उत्तर में यमदूत वर्णन करते हैं। यमदूत कहते हैं, वेद तन ही तो धर्म ही अधर्म विपर्य। धर्म क्या है इसकी परिभाषा वो देते हैं, जो वेदों द्वारा संस्तुत हो वो कहते हैं धर्म है, और इसका विलोम ही अधर्म है। और वेद कहां से आते हैं, वेदों की उत्पत्ति कहां से होती है, वेदों के स्रोत कौन है, वो कहते हैं वेद नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमा। और वेदों की उत्पत्ति स्वयं भगवान नारायण से हुई है, भगवान नारायण ही वेदों के स्रोत हैं। वेद नारायण साक्षात, तो कोई प्रश्न कर सकता है, अरे इस प्रकार पूरी श्रद्धा से ये उत्तर कैसे दे सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस उनका कहां से आया, इतना आत्मविश्वास कहां से आया, यमदूत इतने आत्मविश्वास के साथ ये कैसे कह सकते हैं कि नारायण ही वेदों के स्रोत हैं।
यमदूतों ने कहां पर यह ज्ञान प्राप्त किया है? क्या वह अपने कुछ मनगढ़ंत दोषपूर्ण विचारों को गढ़ रहे हैं? नहीं, वेद नारायण साक्षात स्वयंभू इति शुश्रुमः। स्वयंभू अर्थात यमराज से हमने सुना है। वी हैव हर्ड फ्रॉम यमराज। महाजन यमराज, उनसे हमने इस बात को श्रवण किया है, सुना है, अधिकृत स्रोतों से इस ज्ञान को प्राप्त किया है। जब तक आत्म साक्षात्कार और वेदों का ज्ञान हम अधिकृत स्रोतों से प्राप्त नहीं करते, तब तक उस ज्ञान में मिलावट होती है। वह केवल कपोल कल्पित धारणाएं होती हैं और हमारे इंद्रियों के दोषों से पूर्ण होती हैं और गुणातीत भगवान के संपर्क में हमें स्थापित नहीं कर सकती। स्वयंभू इति शुश्रुमा, क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान श्रवण किया है स्वयं यमराज से, जो कि भगवान के महान भक्त हैं, जो नारायण के लाइन में आ रहे हैं, इसलिए ये ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए जो कह रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें बल है। अर्वाचीन मानव अपने अनेक धारणाओं के आधार पर विचार प्रस्तुत करता है। किसी को पूछो वेद क्या है, 50 अलग अलग विविध बातें बताएंगे। और विशेष रूप से कलयुग में शब्दों को टटोलकर फेर बदलकर प्रस्तुत करने में लोगों को विशेष आनंद आता है, और अधिकृत स्रोतों से श्रवण कर प्रस्तुत कोई नहीं करता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी परंपरागत ज्ञान पर बल देते थे। इसीलिए हमारे भगवद्गीता का नाम है भगवद्गीता एज इट इज, भगवद्गीता यथारूप, अर्थात जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त हो, अन्यथा केवल शब्दों के फेर बदल से जो प्रस्तुत ज्ञान होता है उसमें अनेक दोष होते हैं, वह वास्तविक शुद्ध ज्ञान नहीं होता। ठीक है, हरि बोल, मत चलाइए। तो यह समझना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कैसे टटोल टटोल कर लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं। चाहे तो ये बहुत कुछ उल्टा सीधा बकवास कर सकते थे, लेकिन यमदूत प्रामाणिक हैं, कह रहे हैं इति शुश्रुम, सुना है हमने यमराज से। प्रभुपाद एक कथा बताते हैं कि एक बार एक बालक था, छात्र था, इतिहास की परीक्षा थी, प्रश्न पत्र में आया था प्रश्न, हरिद्वार बाष्टा नाम के राजा के विषय में कुछ इतिहास लिखिए। और इस बच्चे को कुछ पता नहीं था कि हरिद्वार बाष्टा कौन है, क्योंकि कभी किताब खोला ही नहीं था। और प्रश्न पत्र में आ गया, हरिद्वार बाष्टा कौन है, इसके विषय में लिखे। तो बच्चे ने लिखा, हरिद्वार बाष्टा वॉज अ डिबेंडी लैक्टिलाइज्ड बाय द प्लैक्टरी ऑफ टिंडा, अर्थात नए नए शब्दों का निर्माण किया। ऐसे शब्द कहीं डिक्शनरी में है ही नहीं, अलग अलग नवीन शब्दों का प्रयोग करके लिख दिया। और पूरा जो उत्तर था, पूरा उनका आंसर पेपर केवल नए नए शब्दों की रचना करके भर दी। एग्जामिनर के पास पेपर आया और एग्जामिनर ने देखा, क्या है, हरिद्वार बाष्टा वॉज अ डिबेंडी, और डिक्शनरी खोला, डिबेंडी शब्द तो है ही नहीं कहीं पर, लैक्टिलाइज बाई प्लैक्टरी, फैक्टरी तो सुना था लेकिन प्लैक्टरी क्या है, ऑफ टिंडा, टिंडा तो ठीक है, तो हिंदी में या किसी दूसरे उसमें सब्जियां होती है, लेकिन ये तो अंग्रेजी का कौन सा शब्द है। जितने डिक्शनरी थे ऑक्सफोर्ड के, इसके उसके, सब ढूंढ डाले, कुछ नहीं मिला। और देखा कि पूरा आंसर शीट इससे भरा हुआ है नए नए शब्दों से। तो टीचर ने विचार किया, कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम नए नए शब्दों का निर्माण करने का प्रयास तो किया है, इसके लिए इसको पास कर देते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने नंबर दे दिए। तो श्री प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कलयुग में ऐसे तथाकथित तार्किक बहुत होते हैं, जो केवल तर्क का आधार लेकर शब्दों के फेर बदल कर शब्दों को टटोल टटोल कर प्रस्तुत करते हैं। जो लोग बैठे रहते हैं और उनके लेक्चर को सुनते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, और एक घंटे लेक्चर के बाद वो उठकर बाहर जाते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया लेक्चर था, क्या समझे, कुछ नहीं समझ में आया। और कुछ नहीं समझ में आया और एक घंटा वो बोला तो जरूर ही कुछ महत्वपूर्ण होगा,
अर्थात इतना बड़ा स्कॉलर है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वास्तव में जो वेदों का मुख्य मूलभूत ज्ञान है, जो वेदों की निचोड़ है, उसको समझना बहुत सरल है। ऐसा ज्ञान नहीं होता कि हमारे समझ में ही नहीं आए, नहीं, ये केवल वाक चातुर्य से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करने का प्रयास है। लेकिन भगवत ज्ञान को प्राप्त करना हो तो ऐसे वाक चातुर्य का परित्याग कर निष्कपट भावना से केवल भगवान के अधिकृत भक्तों से प्राप्त ज्ञान को हम प्रस्तुत करें तो उसी में जीवन की सफलता है, मानव जीवन की सफलता है। और यहां पर यमदूत प्रामाणिक है, क्योंकि यमराज से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं स्वयंभूर इति शुश्रुमा, वेद नारायण से आए हैं ऐसा हमने स्वयंभू यमराज से सुना है। तो इस प्रकार वो कहने लगते हैं कि वास्तविक ज्ञान हमने ये प्राप्त किया कि नारायण अपने आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं और भगवत धाम में रहकर वह इस भौतिक जगत के अणु अणु पर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक शक्ति के ऊपर उनका नियंत्रण है, जीवों के ऊपर उनका नियंत्रण है, और जो जीव भौतिक जगत में त्रिगुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के अधीन है उसका भी वही नियंत्रण कर रहे हैं। जीव अनेक प्रकार के कार्यों में लगा हुआ है और जीव के इन कार्यों का वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है, अरे भगवान तुम्हारे भगवत धाम में है और भगवत धाम में निवास करते हुए इस भौतिक जगत के कार्यों को वो कैसे निरीक्षण करते हैं? तो इसका उत्तर यमदूत देते हैं, भगवान भले भगवत धाम में हो लेकिन भौतिक जगत पे उन्होंने कुछ साक्षी नियुक्त किए हैं जो जीव के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। क्षण क्षण जीव जो कार्य कर रहा हो उसका हिसाब रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। और जीव कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो इन साक्षियों से छिप सके। और ये 12 साक्षी कौन हैं? सूर्योग्निखम मरुद्देवा सोम संध्या अहनी दिशा तंतु धर्म इति ह्येते दैह्यस्य साक्षिणा। सूर्य, चंद्र, अग्नि, दिशाएं, पृथ्वी, जल, देवतागण, सोम, संध्या, अहनि, दिन और रात, ये सभी अनेक अनेक साक्षी हैं। ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी हैं। और कई लोग इतने अज्ञ होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं कि पाप कार्य करते हुए उनको लज्जा नहीं आती और प्रश्न करने पर वो कहते हैं, अरे पाप करने में हमें क्या डर क्या भय, देखने वाला कौन है, मुझे कौन देख सकता है, मैं तो जो पाप करना है वो करूंगा ही और कोई मुझे रोक नहीं सकता, देखने वाला कोई नहीं। और कई बार लोग विचार करते हैं कि मैं छिपकर, कई बार कोई जवान लड़के होते हैं माता पिता के बिना देखे वो सिगरेट पीते हैं और उनको लगता है कि मैं छुपके सिगरेट पी रहा हूं। अरे अग्नि एक साक्षी है, जिससे तुम सिगरेट को जला रहे हो वो भी एक साक्षी ही है। तो इस प्रकार कैसे आप बच सकते हो? और वास्तव में ऐसे पाप कार्यों से बच पाना संभव नहीं, क्योंकि साक्षी सर्वत्र हैं, सब जगह उपस्थित हैं। और वास्तव में हम देखते हैं कि लोग अपने अलग अलग ऐसी आदतें पालकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और उसका परित्याग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको भय ही नहीं होता, किसी बात का भय नहीं होता। और सिगरेट की बात निकली ही है